पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 15। ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं रमियूणनन्तजिणं अनन्तनाणेन दिट्ठसौवट्ठम् कम्मपदेश विहत्तिं वोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक में प्रदेश विभक्ति अर्थाधिकार है और उसमें हम पृष्ठ संख्या 103 पर आ गए, 103। यहाँ उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति की बात चल रही है उत्तर प्रकृतियों में। अभी हमने क्रम से देखते देखते कल हमने स्त्रीवेद का भी उत्कृष्ट संचय देखा था। अब यहाँ 103 पृष्ठ पर जो 111 नंबर का पॉइंट है, वहां से अभी हम पढ़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं वहां पर कि स्त्रीवेद का जो है, पहले हमने नपुंसक वेद की बात देखी थी। देखो एक मिनट, यहां से एक सौ एक कहां से शुरू हुई स्त्रीवेद की बात? हाँ, 99 पृष्ठ से शुरू हुई थी स्त्रीवेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म 99 में। तो वहां बताया था गुणित कर्मांशिक वाला जीव असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उत्पन्न हुआ। वहां पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र आयु को लेकर स्त्रीवेद को पूरा किया। मैंने पल्ले के असंख्यात वे भाग तक ये भुजगार रूप से हमने देखा था, पहले भुजगार बंद होता है, तो वहाँ स्त्रीवेद को पूरा किया। तो उसका विस्तार से एक जो स्पष्टीकरण है, देखो 100 पृष्ठ पर यहाँ नीचे से दूसरा जो समाधान है, शंका समाधान। शंकाकार ने पूछा था कि असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उत्पन्न हुआ ऐसा क्यों कहा? तो उसके उत्तर में बताया था नपुंसक वेद के बंध की विच्छित्ति करके असंख्यात वर्षायुष के मनुष्य तिर्यंचों में भोग भूमि का जीव है तो वो तो नियम से देव में जाता है, देवगति का बंध करता है, तो उसके तो नपुंसक वेद का बंध वहां नहीं होगा। तो क्या होगा? स्त्री या पुरुष वेद का बंध होगा। तो उसके काल के संख्यात भूभागों में जो नपुंसक वेद का काल हो सकता था, उसके बदले उसके संख्यात भूभागों में स्त्रीवेद का बंध कराने के लिए असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उत्पन्न हुआ ऐसा कहा था। यानी जब त्रसकायिकों में अधिक बार स्त्रीवेद का बंध किया उसने, तो असंख्यात वर्ष की आयु वालों में अधिक बार उत्पन्न हुआ, ये कहने के उसके पीछे उसका मकसद है।
ये बंध की विच्छुति हमने कौन सी अपेक्षा से देखा था?
बंध की विच्छुति क्योंकि भोगभूमि वाला जीव है, नपुंसक वेद का बंध नहीं करता क्योंकि देवगति को बांध रहा है, इसलिए। हाँ होता है ना, पर हमें उत्कृष्ट लेना है इसलिए भुजगार लेंगे, अल्पतर भी होगा, हमें भुजगार को लेना है। अभी हम आगे आते हैं। यहाँ एक प्रश्न पूछा था 101 पृष्ठ पर पहले लाइन में कि वहाँ तो पल्ले के असंख्यात भाग वाले आयु वाले क्यों लिया, उससे ज्यादा आयु हो तो क्या बिगड़ेगा, दो पल्ले तीन पल्ले क्यों नहीं लेते। तो वहाँ पूछा था ऊपर की आयु वाले जीवों के स्त्रीवेद के बंधक काल से पल्ले के असंख्यात वे भाग आयु वाले जीवों का स्त्रीवेद का बंधक काल अधिक है, यह किस प्रमाण से जाना। तीन पल्ले वालों को स्त्रीवेद का बंध अधिक काल तक क्यों नहीं होता, पल्ले के असंख्यात वे भाग वाले को ही क्यों लिया है। समाधान करते हैं कि चूर्णी सूत्र से या युक्ति से जाना जाता है। तो कहते हैं वहां पर देखो समाधान की दूसरी लाइन में, पुरुष वेद की अपेक्षा स्त्री वेद अप्रशस्त है क्योंकि वह कंडे के आग के समान होता है, अतः स्त्री वेद संकलेश परिणाम से बनता है, यानी जहां संकलेश ज्यादा है तो पुरुष वेद से स्त्री वेद का बंध अधिक होगा, और पुरुष वेद विशुद्ध भावों से बनता है यानी मंद कषायों से बनता है। पल्ले के असंख्यात वे भाग आयु वालों में जो संकलेश का काल है वह ऊपर के आयु वाले जीवों के संकलेश के संबंध रखने वाले काल से अधिक है, यानी छोटी आयु वालों में ये संकलेश का काल ज्यादा है और लंबी आयु वाले तीन पल्ले आदि वालों में संकलेश का काल भी अल्प है क्योंकि वहाँ परिणाम भी अधिक विशुद्ध होते हैं।
तो यहाँ पे जो पल्ले के अरे ये जो भोगभूमिका जीव लिया वो देवगत अरे गति में तो कोई भी गति बांध सकता है जीव, खाली आयु के साथ देवगति बंधेगी तभी उसका पुरुष वेद या स्त्री वेद का बंध होगा, अभी गति कोई भी बांधता है क्योंकि हमने देखा था कि जीव की गति बांधने में कोई बाधा नहीं है।
बाधा नहीं है हाँ। फिर भी क्या ग्रहवेग वाला 3 इंच गति बांधेगा, बाधा तो नहीं। मन कौन से जीव कौन से गति बांध सकते हैं, यानी नॉट ओनली गुणस्थान परंतु भव की अपेक्षा भी गति का बंध है ना। क्या नारकी जीव देवगति बांध सकता है,
नहीं
बांध सकता, देव नरक गति नहीं बांधता, मिथ्या दृष्टि देव भी नरक गति नहीं बांधेगा, ना ही देवगति बांधेगा।
तो वहाँ पे परिणाम ऐसे है तो भी ये गति नहीं,
गति के अनुसार कितने ही बंध गति के अनुसार हो गए, उस भव के अनुसार हो गए। जैसे देव है उसके तो शुक्ल लेशा वाला देव है, देव गति क्यों नहीं बांधता, देव देव गति नहीं बांधेंगे, मनुष्य 3 इंच गति बांधेंगे, अभी शुक्ल लेशा वाले ऊपर के तो मनुष्य ही गति को बांधेंगे। तो ये भव के अनुसार भी वो बंध कौन से हो सकते है उसकी बात आती है, यही यहाँ भोगभूमि के बारे में बताया क्योंकि उसका नपुसक वेद के बंधकाल पूरा स्त्री पुरुष वेद में बांट दिया ना उन्होंने, उसका अर्थ ही क्या है, वहां बनता ही नहीं। हाँ 33 सागर तक सम्यक दृष्टि था तो मनुष्य गति बांध रहा था, अंत में जाए 3 इंच आयु बांधेगा 3 इंच गति बांधेगा और 3 इंच में जाएगा। गति कौन सी बांधी है अंदर पड़ी है उससे कुछ मतलब नहीं है, उस गति के साथ जो योग्य है उतने कर्म बंधेंगे उसके, वैसे वैसे कर्म बंधेंगे ना क्या।
नहीं नहीं तो सातवें नरक वाला जीव भी मनुष्य अरे मनुष्य गति बांधेगा ही नहीं,
क्यों नहीं बांधेगा, सम्यक दृष्टि नारकी तो मनुष्य गति ही बांधेगा। जब मिथ्या तो में चला जाएगा तो 3 इंच गति भी बांधेगा, 3 इंच आयु भी, गति बंधने से कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो टर्न होकर उदय में आती है।
हाँ, इसीलिए यहाँ पे भी वो अपेक्षा,
यहाँ पर भी वो भी अपेक्षा नहीं लागू होगी, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो देव में ही जाने वाला है, देव गति का बंध करेगा क्योंकि नपुसक वेद के बंध की विच्छित्ति बताई ना वहां पर।
नहीं नपुसक नपुसक बंध के इसीलिए मैंने पूछा कि स्त्री वेद की दूसरे गुणस्थान में बंधक की विच्छित्ति,
हाँ वो बंधक की विच्छित्ति गुणस्थान के अकॉर्डिंगली नहीं लेना है यहाँ पर। हाँ अब हम आगे पढ़ते हैं, अब 102 पृष्ठ पर आते हैं, हम 103 पर थे। उन्होंने उनका ऐसा कहना था गुणस्थान के अनुसार जो बंध विच्छित्ति होती है नपुसक वेद की बंध विच्छित कहाँ पर होती है? पहले गुणस्थान में, इन्हें पहले गुणस्थान के ऊपर वो बनता ही नहीं। अब यहाँ स्त्रीवेद की बात चल रही थी, तो स्त्रीवेद की बंध विच्छित दूसरे में है, और यहाँ तो आप कह रहे कि स्त्रीवेद का बंध हो रहा है, तो जिसने बंध विच्छित की ऐसा सम्यक दृष्टि स्त्रीवेद को बांधेगा ही नहीं,
क्योंकि साशादन गुणस्थान में वेदे का,
और इनका कहना है दूसरे गुणस्थान वाला कह दो तो उसका काल तो थोड़ा होता है, तो उसको भी नहीं ले सकते हम।
हाँ।
तो यहाँ गुणस्थान से कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे एक इंद्रिय संबंधी स्थावर संबंधी बंध देवों के होता है, कौन से देवों के होता है? गौनत्रिक और सौधर्मेश्वर, ऊपर होता ही नहीं है। नारकियों को तो स्थावर का बंध ही नहीं होता है, तो कौन से जीव को कौन सा बंध हो सकता है ये भी नक्की है। मार्गणा में हमने देखा था ना पहले, थे ना ये कर्मकांड में थे। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे, वो कितना है क्या है डेढ़ गुना हानि वगैरह उसकी बात हमने देखी थी। अब 103 पृष्ठ पर आते हैं, यानी उन्होंने इतना ही बताया था कि जो सत्ता में स्थित द्रव्य है वो डेढ़ गुना हानि से गुणित समय प्रबद्ध होता है। तो स्त्रीवेद में जब उत्कृष्ट बताया है तो उसमें से थोड़ा कम संख्यात वा भाग कम इतना द्रव्य होता है, और पुरुष वेद संबंधी द्रव्य को उसमें से उन्होंने घटाया, क्योंकि लगातार स्त्रीवेद का बंध नहीं हो रहा है, बीच बीच में पुरुष वेद का भी बंध होता है, परंतु उसका बंधक काल संख्यातवा भाग है और स्त्रीवेद का बंधक काल संख्यात गुणा है, उसी प्रोपोर्शन में उनका संचय भी होगा। 111 नंबर वहां से पढ़ेंगे अभी, ये तो यहां तक तो हमने कल पढ़ा था। अब यहां दोनों वेदों के द्रव्य के बंटवारे का विधान कहते हैं, जो इस प्रकार है। यदि दोनों वेद संबंधी द्रव्य के डेढ़ गुणहानि प्रमाण पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध होते हैं, तो क्या कहते हैं? पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध क्यों कहा?
नहीं,
अब स्त्रीवेद को भूल जाओ, पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध का अर्थ क्या है? हाँ, तो उसमें और एक इंद्रिय द्विंद्रिय में कोई फर्क होता है? वो बात नहीं है,
जो पंचेंद्रिय में
समय प्रबद्ध की जो क्वांटिटी है
पंचेंद्रियों में ज्यादा है,
पंचेंद्रियों में योग ज्यादा है, एक इंद्रिय आदि से पंचेंद्रियों में योग ज्यादा है, तो वहाँ समय प्रबद्ध भी अधिक परमाणुओं का होगा, इसलिए कहते हैं दोनों वेद संबंधी द्रव्य के डेढ़ गुणहानि प्रमाण यानी डेढ़ गुणहानि से गुणित पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध होते हैं। ये तो वो त्रैराशिक मान रहे हैं, दोनों को मिलकर अमुक कितने डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध होते हैं, तो पृथक पृथक स्त्रीवेद और पुरुषवेद के बंधक काल में कितने कितने समय प्रबद्ध प्राप्त होते हैं, दोनों का मिलकर काल जो है उसमें इतना होता है, यानी एक 100% कहो या एक पूरा, हम दोनों को मिलकर एक कहेंगे, तो उसमें इतना होता है, तो स्त्रीवेद का काल कितना है, या हम 10 समझेंगे पूरा मिलकर, तो उसमें से 7 है स्त्रीवेद के और 3 है पुरुषवेद के अगर कहेंगे, तो उतनी मात्रा में उसका समय प्रबद्ध भी कितने होते हैं, डेढ़ गुणहानि का भी उतना भाग करेंगे। इस प्रकार त्रैराशिक करके फल राशि से इच्छा राशि को गुणित करके प्रमाण राशि से उसमें भाग देने पर स्त्रीवेद के डेढ़ गुणहानि के संख्यात बहुभाग प्रमाण, क्योंकि उतने प्रोपोर्शन में उनका बंधक काल है, और पुरुष वेद के डेढ़ गुणहानि के संख्यात विभाग प्रमाण समय प्रबद्ध प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ख्याल में लेना है हमें, ये तो कोई रटने की याद रखने की तो बात है ही नहीं है। अब 112 नंबर का बंधक काल संख्यात वा भाग है और वो बहुभाग है, संख्यात बहुभाग। हाँ, गुणित कर्मांशिक और ये भोग भूमि वाला पल्ले के असंख्यात विभाग वाले आयु वाला बारंबार उसमें गया है ऐसा जीव लेना, ये बाकी कंडीशंस उसमें तो लागू होते ही है, हर एक जीव में नहीं बात होगी। हमने जो पर्टिकुलर जीव लिया है श्री वेद के उत्कृष्ट संचय वाला उसमें ये प्रोपोर्शन होगा।
सो तीन पल्ले वाला आयु में ये प्रोपोर्शन नहीं होगा,
हर एक में नहीं है, हर एक मनुष्य में तिर्यंच में देव में नारक में किसी ऐसा हर एक में नहीं है। उत्कृष्ट संचय का जो स्वामित्व अभी हमने इतना सारा डिराइव किया है उस जीव के लिए होगा यह। अब यहाँ स्त्री वेद के उत्कृष्ट द्रव्य के स्वामी के लिखा ना, स्त्री वेद के उत्कृष्ट द्रव्य का स्वामी उसके अंतिम समय संबंधी अल्प बहुत्व को कहते हैं, जो इस प्रकार है, यानी जो जिसके सत्ता में स्त्री वेद का द्रव्य मैक्सिमम है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। नपुसक वेद का द्रव्य सबसे थोड़ा है क्योंकि वह डेढ़ गुणहानि के असंख्यात वे भाग मात्र पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध प्रमाण है। हमने देखा ना वो संख्यात बहुभाग पुरुष वेद का संख्यातवा भाग और ये असंख्यातवा भाग, डेढ़ गुणहानि के असंख्यात वे भाग से गुणित समय प्रबद्ध, उससे पुरुष वेद का द्रव्य असंख्यात गुणा है क्योंकि टोटल का संख्यातवा भाग है। तो नपुसक वेद का हमने असंख्यातवा भाग देखा तो उससे यह असंख्यात गुणा हो जाता है क्योंकि डेढ़ गुणहानि के संख्यात वे भाग मात्र पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध प्रमाण है। उससे स्त्रीवेद का द्रव्य, क्योंकि हमने ऐसा ही जीव लिया है स्त्रीवेद के उत्कृष्ट स्वामित्व वाला, तो स्त्रीवेद का द्रव्य संख्यात गुणा है क्योंकि वह कुछ कम डेढ़ गुणहानि मात्र पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध प्रमाण है। तीनों में उसका प्रमाण कितना है, सत्ता तो तीनों वेदों की होगी उसमें, तो ये बता दिया। अब स्त्रीवेद के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण सिद्ध करने के लिए असंख्यात वर्ष की आयु वालों में काल का अल्प बहुत्व बतलाते हैं। जनरली बात बता रहे हैं कि बंधक काल किसका बड़ा है, तो वहां कहते हैं हास्य रति का बंधक काल सबसे थोड़ा है। ये अल्प बहुत्व से जो हमने पहले बात देखी थी वही सिद्ध होती है, उससे पुरुष वेद का बंधक काल विशेष अधिक है, उससे स्त्रीवेद का बंधक काल संख्यात गुणा है और उससे अरति और शोक का बंधक काल विशेष अधिक है। इन्हें स्त्रीवेद के बंधक काल से भी अरति शोक का बंधक काल विशेष अधिक है और यही प्रूव करने के लिए उन्होंने बीच में अरति शोक की भी बात उठाई थी। हमने बोला यहाँ अरति शोक को क्यों लिया था, देखो थोड़ा ले लेते हम देखते हैं। एक से दो पर मिला आपको, हाँ शंका समाधानी में विचार है। शोक की बात हुई हो क्योंकि अरति और शोक का एक साथ, देखो देखो हाँ 102 पृष्ठ पर देखो समाधान में लिखा है ना, स्त्री वेद के उत्कृष्ट द्रव्य से शोक का उत्कृष्ट द्रव्य विशेष अधिक है क्योंकि उसका बंधक काल है अधिक। ये आगे आने वाला जो अभी हमने देखा बंधक काल देखा, अभी शोक की बात स्त्री वेद से ज्यादा है वो नहीं देखी बात, उसका बंधक काल अधिक है ये अभी अभी हमने देखा। अभी ये हुआ अपना 104 पृष्ठ पर आते हैं, नया सूत्र है। पुरुष वेदस्य उक्कस्यम पदेश संतकम्मम कस, पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म किसके होता है, यानी उसका स्वामी कौन सा जीव है, यह सूत्र सुगम है। उसका जवाब कहते हैं गुणिद कम्मंसियो ईशानेषु नहुंसे वेदं पूरे दुण तदो कमेण असंख्येज वत्साहुषु उववन्नो तत्थपलिदो वमस असंख्येजदि भागेण इत्थिवेदो पूरिदो तदो सम्मत्तं लब्धिदुण लब्धिदुण मदो पलिदो वम ठिदियो देवो जादो तत्थ तेणेव पुरिस वेदो पूरिदो तदो चुदो यानी वहां से चुत होकर मनुष्यो जादो मनुष्य में उत्पन्न हुआ सव लहु कसाए खवेदी लघु सर्वत सबसे लघु काल में कषायों की क्षपणा की तदो नऊन से वेदम पक्षी विदुण जम्मी इथि वेदो पक्षित तो तत्समय पुरिस वेदस उक्कसयम पदेश संतकम्मम। हिंदी पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा, प्राकृत कितना ख्याल में आया पता नहीं, नहीं आया। अच्छा यहाँ पढ़ते हैं। गुणित कर्मांश वाला जीव ईशान स्वर्ग में नपुसक वेद की पूर्ति करके, नपुसक वेद की उत्कृष्ट वाला हमने देखा था तो ईशान वाले को लिया था, तो उसने अधिक से अधिक नपुसक वेद वहां संचित किया, पूर्ति करके नहीं बंद करके, उत्कृष्ट संचय करके। फिर क्रम से असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उत्पन्न हुआ। क्रम से क्यों, डायरेक्ट तो नहीं होगा, हाँ तो यथाक्रम जैसे पॉसिबल है। वहां पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र काल के द्वारा उसने स्त्री वेद की पूर्ति की, जो अभी अभी हमने पढ़ा था, तो स्त्री वेद का उत्कृष्ट हुआ उसके। फिर सम्यक्त को प्राप्त करके मरा, भोग भूमि में सम्यक्त प्राप्त करके मरा। अब सम्यक दृष्टि जीव कहाँ तक उत्पन्न होगा,
ये तो पहले और दूसरे में ही
जाएगा, पहले दूसरे में ही जाएगा। हाँ, और पल्योपम की स्थिति वाला देव हुआ, वहां उसने पुरुष वेद की पूर्ति की। फिर मरकर मनुष्य हुआ, सम्य दृष्टि है, वहां मरकर मनुष्य हुआ और सबसे कम काल के द्वारा कषायों का क्षपण किया। फिर नपुसक वेद का प्रक्षेप करके जिस समय स्त्री वेद को प्रक्षिप्त किया है, क्या कहना चाहते हैं, पहले में नपुसक वेद की क्षपणा होती है, क्षपणा होती का अर्थ क्या होता है? अब ये कौन से वेद वाला जीव होगा,
ये पुरुष वेद से चढ़ने वाला,
पुरुष वेद है क्योंकि समय दृष्टि हुआ है और मनुष्य में आया है, तो उसके पहले नपुसक वेद की क्षपणा हुई, तो सारे परमाणु स्त्री वेद रूप से पुरुष वेद रूप से हो गए, पुरुष वेद रूप में ट्रांसफर हो गए। अब उसके बाद अंतर्मुहूर्त में स्त्री वेद की क्षपणा हुई है, स्त्री वेद का भी संक्रमण पुरुष वेद में हो गया, प्रक्षिप्त करना है पुरुष वेद में डालना, पुरुष वेद रूप से संक्रमित होना। प्रक्षेप का अर्थ होता है एडिशन, देखो नपुसक वेद का प्रक्षेप करके जिस समय स्त्री वेद को प्रक्षिप्त किया है उस समय उसके पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है, यानी नपुसक वेद का भी माल पुरुष वेद में आया, स्त्री वेद का भी सारा का सारा पुरुष वेद में आया, उस समय उसका मैक्सिमम है पुरुष वेद का।
बंधक के अंतिम समय नहीं लिया, पुरुष वेद के बंधक के अंतिम समय में नहीं लिया,
नहीं नहीं,
ये जब स्त्री वेद का
जिस समय स्त्री वेद का पुरुष वेद में प्रक्षेप होता है उस समय, क्योंकि जो अगर बंद के अंतिम समय लेंगे तो जितने अभी अंतर्मुहूर्त बाकी है उसका जो कुछ समय बाकी है, पुरुष वेद का उदय काल ज्यादा है, स्त्री वेद की क्षपणा पहले होती है, तो वहां निर्जरा भी हो जाएगी, तो उसके उत्कृष्ट प्रदेश संचयन कम हो जाएगा उसका, तो जिस समय स्त्री वेद के परमाणु पुरुष वेद में संक्रमित होते हैं उस समय लेना। अब इसी के आगे चर्चा चलेगी। गुणित कर्मांश वाला कहने से, अभी एक एक शब्द लेके उसका अर्थ बता रहे हैं। गुणित कर्मांश वाला तो हमने देखा है किसको कहना, तो बादल एक ने जो पृथ्वी का एक में काल बिताया, कर्म स्थिति में 2000 सागर बाकी थे तभी, वो सारे कंडीशंस याद करना। तो गुणित कर्मांश वाला कहने से कुछ अधिक 2000 सागर कम कषाय की कर्म स्थिति, यानी 70 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस, या कषाय में अगर लेना है तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 2000 सागर प्रमाण। जो जीव बादर पृथ्वी कायकों में उत्कृष्ट संचय की सामग्री के साथ रहा उसका ग्रहण करना चाहिए। संचय की सामग्री हमने बहुत बार देखी है, अधिक योग में ज्यादा बार रहा, पर्याप्त में ज्यादा बार रहा, शरीर पर्याप्ति पूरी होने का काल छोटा रहा, वो योग अधिक बार उत्कृष्ट रहा, आयु का बंध जघन्य योग से हुआ, वगैरह वगैरह। फिर शंका, अभी सूत्र के साथ इसका मिलान करना, गुणित कर्मांश वाले का अर्थ देखा, अब ईशान स्वर्ग में बताया। तो शंकाकार पूछ रहा, ईशान स्वर्ग में गया ऐसा क्यों कहते हो? उसका समाधान, नपुसक वेद के द्रव्य को पूरा करने के लिए उसे ईशान स्वर्ग में उत्पन्न कराया है। पहले हमने देखा था ईशान स्वर्ग में उसको नपुसक वेद का, क्योंकि ईशान से वो एकेंद्रिय में जाने वाला जीव लिया है, तो एकेंद्रिय स्थावर का बंद करते समय उसको नपुसक वेद का भी बंद होगा, इसलिए अधिक से अधिक काल वो उसका बंद करता रहा। फिर शंका, तीनों वेदों के द्रव्य को एकत्र करके पुरुष वेद का उत्कृष्ट द्रव्य कहने के लिए प्रत्येक वेद की पूर्ति कराना व्यर्थ है, ये क्या कहना चाहते हैं? आपने एक बार उसको ईशान में भेजा, नपुसक वेद के मैक्सिमम उसने द्रव्य इकट्ठा किया, फिर असंख्यात वर्ष के आयु वालों में गया, वहां स्त्री वेद का इकट्ठा किया, और प्रयोजन क्या रहा? तो बाद में सबको तो ट्रांसफर करना है पुरुष वेद में, तो पहले से पुरुष वेद बांधे तो क्या जाता है? यानी नपुसक वेद के मैक्सिमम पूर्ति की स्त्री वेद की कहने की क्या जरूरत है? कोई भी वेद क्यों ना बांधे, लास्ट में तो वो सभी पुरुष वेद में ही जाने वाला है, तभी तो हम पुरुष वेद की उत्कृष्ट कहेंगे। ये शंकाकार की शंका है। फिर शंका पढ़ते, तीनों वेदों के द्रव्य को एकत्र करके पुरुष वेद का उत्कृष्ट द्रव्य कहने के लिए प्रत्येक वेद की पूर्ति कराना व्यर्थ है, क्योंकि वेद सामान्य के विवक्षित रहने पर ध्रुवबंदी बने को प्राप्त वेद के समय प्रबद्ध अन्य प्रकृति रूप नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? वेद का बंध तो हर समय चल रहा है, कौन से वेद का उसमें डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वो प्रतिपक्षी है, परंतु वेद सामान्य यानी वो नपुसक वेद है, पुरुष वेद है, के स्त्री वेद के, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, तो ये तो वेद सामान्य तरीके, ये तो ध्रुवबंदी है, अनादि से उसका बंध चल ही रहा है, जब जाके अवैध हो जाएगा अपगत वेद, तब जाके बंध की विच्छित्ति हो जाएगी, और वो वेद के समय प्रबद्ध अन्य प्रकृति रूप नहीं हो रहे, अतः प्रत्येक वेद की पूर्ति न कराकर, यानी हर एक का अलग अलग बंध अधिक से अधिक नहीं कराकर, जैसे सातवें नरक में कषायों का उत्कृष्ट स्वामित्व दिया है, बताए ना गुणित कर्मांशिक के सातवें नरक के अंतिम समय में कषाय का उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, वैसे ही वेद सामान्य का उत्कृष्ट स्वामित्व देकर उसे मनुष्यों में उत्पन्न कराकर जल्दी से जल्दी क्षपक श्रेणी पर चढ़ाकर और तीनों वेदों के द्रव्य को पुरुष वेद रूप से करके पुरुष वेद का उत्कृष्ट स्वामी देना चाहिए। ये शंकाकार की शंका ख्याल में आई? गुणित कर्मांशिक है और बस तीनों वेद का मिलकर बहुत सारा है वहां पर संचय, और उसको जल्दी क्षपक श्रेणी पर चढ़ा दो। दूसरा कारण बता रहे शंकाकार, सौधर्म कल्प में पुरुष वेद का संचय कराने पर उस जीव को सम्यक तो प्राप्त कराना चाहिए। यहाँ तो भूख भूमि के अंत में ही सम्यक तो प्राप्त किया था और फिर वहां से सौधर्म में उत्पन्न हुआ था। अब इसको कहते हैं सौधर्म में पहले पुरुष वेद का संचय कराओ और बाद में सम्यक तो प्राप्त कराओ, अन्यथा पुरुष वेद ध्रुवबंदी नहीं हो सकता, और ऐसा होने पर गुणश्रेणी निर्जरा के द्वारा तीनों वेदों का द्रव्य नाश को प्राप्त होगा। यानी पहले ही सम्यक तो प्राप्त कराओगे तो गुणश्रेणी में बहुत सारा द्रव्य चला जाएगा, ये बात बताना चाहते हैं। अतः यहाँ जो स्वामित्व बतलाया गया है वह भला नहीं है, ऐसी भलामन वो शंकाकार कर रहा है। यदि कहा जाए बंधक काल के बड़ा होने से पुरुष वेद का बहुत द्रव्य प्राप्त हो जाएगा, सो भी बात नहीं है, क्योंकि वेद सामान्य की विवक्षा होने पर बंधक काल से उत्पन्न हुई विशेषता नहीं पाई जाती। कोई ना कोई वेद तो बंध ही रहा है ना, तो बंधक काल छोटा हो या बड़ा हो उससे क्या लेना देना, ऐसा इसका कहना है। अर्थात बंधक काल की यही विशेषता है, उस काल में उसी वेद का बंध होता है जिसका वह बंधक काल है, परंतु जब किसी न किसी वेद का बंध बराबर होता है और वह सब आगे जाकर पुरुष वेद रूप से संक्रांत हो जाता है, तो बंधक काल से भी कोई लाभ नहीं है, ऐसी शंका खास करके जानबूझकर उठाई है। आचार्य उठाते हैं। समाधान, यहाँ इस शंका का समाधान कहते हैं, कषायों की तरह सातवें नरक में तीनों वेदों का संचय कराना युक्त नहीं है, क्योंकि वहां उनके बहुत द्रव्य का उत्कर्षण नहीं होता। नपुसक वेद का ईशान देवों में ही लगाया, स्त्री वेद का असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिर्यंचों में ही, तथा पुरुष वेद का सौधर्म स्वर्ग के देवों में ही बहुत द्रव्य उत्कर्षण को प्राप्त होता है। क्यों? जहां जिसका बंध है वहां उसका उत्कर्षण होगा, तथा उपशामना निदत्य और निकाचना रूप से परिणमित होता है। उत्कर्षण को प्राप्त किया है, नीचे की स्थिति में से ऊपर की स्थिति में चला गया, और वो क्या हुआ उसका, उपशामना निदत्य और निकाचना रूप से परिणमित होता है, यानी वहीं पर रहता है, नीचे नहीं आ सकता, उसका अपकर्षण नहीं हो सकता है, ना संक्रमण हो सकता है, उसी को निदत्ति निकाचित कहते ना। निदत्ति निकाचित नाम के कोई कर्म नहीं होते हैं, जो परमाणु वहीं पर पड़े रहते हैं, जिनका अपकर्षण नहीं होता है, उपशम नहीं होता है, जो अन्य चीजें नहीं होती है, तो उसको ये उपशामना के लिए तो उपशामना रूप तो परिणमित हुआ है, यानी वहीं पर रहेगा, नीचे नहीं आएगा, इस रूप परिणमित हुआ है। हाँ, स्थिति अनुभव दोनों है, वह है वहीं पर बना रहेगा, उसको निधत्ति निकाचना कहते हैं, क्योंकि क्षेत्र भव और भाव के आश्रय का बल पाकर, क्या कहते हैं, क्षेत्र भव और भाव, हमने अकेले गुणस्थान की बात नहीं, यहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा भी, भव की अपेक्षा भी, और जीव के भाव यानी परिणाम की अपेक्षा भी, उसके आश्रय का बल पाकर कर्म स्कंधों के पर्यायांतर को प्राप्त होने में कोई विरोध नहीं है, यानी अभी ऐसे हो गया है, वहां वो अपना अपना द्रव्य उत्कर्षण को प्राप्त हुआ है, तो वहां उसकी उपशामना होती, नीचे नहीं आता है, उसी को निधत्ति निकाचित रूप हो जाते हैं, अपनी जगह छोड़कर उसका संक्रमण अपकर्षण आदि बातें नहीं होती है। फिर शंका, इन वेदों के ये भाव इन्हीं स्थानों में अधिक होते हैं, अन्यत्र नहीं होते, ये कैसे जाना? ये जो बताए थे नपुसक वेद का ईशान देवों में, श्री वेद का असंख्यात वर्ष वगैरह वगैरह, यहीं पर होता है, अन्यत्र नहीं, कैसे जाना? तो सूत्र से जाना। तो कहते हैं, जिन भगवान के मुख से निकले हुए इसी चूर्ण सूत्र से जाना, चूर्णी सूत्र से जाना। फिर शंकाकार पूछता है, उत्कर्षण के लिए कषाय की अधिकता कारण है, और सातवें नरक की अपेक्षा असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिर्यंच तथा देव उत्कृष्ट कषाय वाले नहीं होते, अतः उनमें उत्कर्षण नहीं बनता। पूछने का उसका क्या है कि सातवें नरक में उत्कर्षण कराओ ना, क्योंकि वहां संकलेश ज्यादा है। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कषाय ही उत्कर्षण का निमित्त है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अतः क्षेत्र और भव के भी उत्कर्षण में निमित्त होने में कोई विरोध नहीं आता। पहले बताए ना, नपुसक वेद का उत्कर्षण वो तो ईशान में होता है वगैरह वगैरह।
ये भव तो समझ गए, क्षेत्र में भी,
क्षेत्र में वो भोग भूमि ऐसा कहेंगे ना, भोग भूमि का जीव या वहां जन्मने वाले जीव, इस तरह से ले सकते हैं, उसको भव में भी ले सकते हैं। ये तो यह उन्होंने जनरल स्टेटमेंट किया, क्षेत्र और भव। प्रथम सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर, वैसे तो क्षेत्र विपाकी में गत्यानुपूर्वी को ही लेते हैं, परंतु यहाँ अन्य भी कोई होगे, यहाँ उसका अपना विषय नहीं है। अपना विषय जो चल रहा है कि मात्र कषाय से ही उत्कर्षण होता है, ऐसा नहीं समझना, ये बात बता रहे हैं। नया बंध, तो यहाँ वही देखा हमने, नपुंसक वेद के बंध की मुख्यता है ईशान में, इसलिए वहाँ उत्कर्षण की भी वही मुख्यता है, जो दोनों में कारण वही है। अब और आगे उसको समझा रहे, प्रथम सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर, प्रथम सम्यक्त्व का अर्थ क्या है?
प्रथमोपशम
सम्यक्त्व। यहाँ जो उन्होंने बताया था ना, देखो सूत्र देखना 104 पर, गुणित कर्मांश वाला लिया, ईशान में नपुंसक वेद की पूर्ति की, असंख्यात वर्ष की आयु में त्रिवेद की पूर्ति की, बाद में सम्यक्तों को प्राप्त करके मरा, तो ये प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त हुआ। तो प्रथम सम्यक्त के प्राप्त होने पर, देखो नपुंसक वेद और स्त्री वेद की जब पूर्ति हो रही थी उतने काल में सम्यक्त को नहीं प्राप्त किया, कि सम्यक्त होता पहले ही तो नपुंसक वेद और स्त्री वेद का बंध ही नहीं होता, पुरुष वेद का ही बंध होता। और ये प्रथम उपशम ही सम्यक दृष्टि क्यों हो रहा है, वेदक सम्यक दृष्टि क्यों नहीं?
नहीं नहीं, वेदक होगा तो उसकी सत्ता में ये दोनों कमी हो गए ना।
देखो वेदक सम्यक दृष्टि होता तो ईशान की आयु कितनी है, यानी सादी मिथ्या दृष्टि होता ऐसा ले ले, वेदक सम्यक दृष्टि को छोड़ दो, सादी होता 28 की सत्ता वाला, तो ईशान की आयु कितनी है?
दो सागर।
और फिर ये असंख्यात वर्ष की आयु वाले में पल्ले के असंख्यात भाग वालों में भी उत्पन्न किया, तो क्या उतने काल में उसकी उद्वेलना पूरी नहीं होती? यानी अभी होना है तो उसको प्रथमोपशम ही होना पड़ेगा। ख्याल में आती है ना बात, सादी मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं लेना? यदि सादी मिथ्या दृष्टि भी होता और उसका नपुंसक वेद और स्त्री वेद का बंध काल इतना लंबा लिया हमने, आयु इतनी लंबी ली ना उसकी,
उद्वेलना कौन सी अपेक्षा?
उद्वेलना इसलिए कि उसको प्रथमोपशम ही करना पड़ेगा, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता के साथ तो इतने लंबे काल तक नहीं रहेगा वो। यानी इसको प्रथमोपशम सम्यक तो क्यों कहा, इसका हम कारण देख रहे हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि होता तो स्त्री वेद नपुंसक वेद का बंध नहीं करेगा। आप कहेंगे सम्यक दृष्टि छोड़ दो, सादी मिथ्या दृष्टि तो हो सकता है ना, हो सकेगा, परंतु सादी मिथ्या दृष्टि भी कितने लंबे काल तक वो उसका 28 की सत्ता वाला रहेगा, पल्ले के असंख्यात विभाग, और यहाँ तो ईशान की आयु और फिर असंख्यात वर्षायु वगैरह वगैरह लिए हैं, तो वो बात नहीं बनती।
पर ये जो नियम से पहले नपुंसक वेद का मैक्सिमम द्रव्य वाला होगा, पीछे स्त्री वेद का मैक्सिमम द्रव्य वाला होगा, उसको ही लिया है,
उसको बार बार भी ले सकते हैं, उसको बहुत बार भी लेंगे 2000 सागर में, बहुत बार ईशान स्वर्ग की आयु वाला हुआ, बहुत बार पल्ले के असंख्यात विभाग वाला हुआ, ऐसा भी लेंगे हम उसमें, ये पहले बात आ चुकी है। तो कहते प्रथम सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर वहां क्या कार्य होगा, गुणश्रेणी निर्जरा के द्वारा प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में अपूर्वकरण, जो तीन करण परिणाम मानते हैं, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण आदि में तो गुणश्रेणी निर्जरा तो होगी, वेदों के द्रव्य की हानि होगी ऐसा जो कहा वह भी दोष के लिए नहीं है, क्योंकि नरक गति से आकर मनुष्यों में उत्पन्न होकर प्रथम सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर भी प्रदेश हानि पाई जाती है। यानी यहाँ जो कुछ प्रदेश हानि होगी वो तो होनी है, यानी वो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि सम्यक तो प्राप्त कराना है और पुरुष वेद को मैक्सिमम बांधना है ना यहाँ पर। अतः उपशम निधत्य और निकाचना करणों के द्वारा बहुत द्रव्य की निर्जरा को रोकने के लिए तीनों वेदों का उक्त स्थानों में संचय कराना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? उससे कुछ नहीं लेना देना, यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ईशान में ही नपुंसक वेदों की पूर्ति क्यों कराई, वहां बंद होता है और वहां के ऐसे परिणाम है कि वहां उत्कर्षण भी होता है, उत्कर्षण होता है और उसको उपशमित किया जाता है, यानी कौन सा उपशम बना रहा, ज्यादा उदय में नहीं आए, निधत्य और निकाचन, यानी अपकर्षण करके वो परमाणु ज्यादा उदय में नहीं आए ऐसे किए जाते हैं। उस करण करने के कारण वो सत्ता में बने रहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं देखो, उपशम निदत्य और निकाचना करणों के द्वारा, यानी जहां जहां हमने नपुसक वेद के उपशम निदत्ति निकाचना कहाँ होगी, ईशान में होगी। स्त्री वेद की निदत्ति निकाचित निकाचना कहाँ होगी, वो असंख्यात वर्षायुष वालों में होगी। और पुरुष वेद का भी बंधा भी वहां हो गए सौधर्म में सम्यक के बाद, तो अभी वो तो सम्यक तो होगा तभी की बात है, परंतु उसके पहले नपुसक वेद की और स्त्री वेद की उपशम निदत्ति निकाचना हो गई है, तो कम द्रव्य का निर्जरा होगी, ज्यादा नहीं। तीनों वेदों का
एक बात सरप्राइजिंग लगती है, जो 33 सागर वाली देव में उत्पन्न होता है जो जीव, उसके तो निरंतर पुरुष वेद का बंध है।
हाँ।
अभी वहाँ पे भी गुणित कर्मांशिक वाला जा सकता है,
वहाँ भी
गुणित कर्मांशिक वाला इतना ज्यादा द्रव्य नहीं होगा, पर गुणित कर्मांशिक वाला जीव वहाँ पे भी जा सकता।
हाँ।
और वहाँ पे 33 सागर तक निरंतर वो पुरुष वेद का ही बंधक करेगा।
हाँ।
वो मनुष्य में आके जब भी उसकी लास्ट समय में होगी, उससे भी ये द्रव्य ज्यादा बताया।
हाँ, ज्यादा है ये द्रव्य, ज्यादा है, क्योंकि गुणित कर्मांशिक वाला वहाँ जाएगा, उसने उतनी निर्जरा होगी कि नहीं होगी।
अच्छा, ये 33 सागर तक वो उसका,
ये गुणित कर्मांशिक वाला आया, जल्दी में जल्दी उसको मनुष्य में लाया है, वहाँ टाइम पास करेगा तो क्या होगा उसका।
अपकर्षण ज्यादा।
और वहाँ जाने वाला भी मुनिराज होंगे, मुनिराज होंगे तो उनकी कितनी निर्जरा होगी पहले ही, ख्याल में आता है ना।
ऐसा भी हो सकता है मनुष्य गति में संयम धारण किया और इमीडिएटली कुछ काल में मरण हो गया,
फिर भी संयम धारण किया तो उनके तो निर्जरा होनी है।
पर वहाँ पे पीछे
और गुणित कर्मांशिक वाला आया है तो उसको तो प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त कराना है, उस काल में भी, संयम के काल में भी जो कुछ है। देखो नीचे की शंका 116 नंबर, फिर क्रम से असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उत्पन्न हुए हो क्यों कहा, क्रम से कहा ना, ईशान में गया फिर नपुसक वेद की पूर्ति, क्रम से। समाधान, असंख्यात वर्ष की आयु वालों में सुदीर्घ बंधक काल में बंधकों प्राप्त हुए स्त्री वेद के प्रदेश समूह का उपशमकरण, निदत्तीकरण और निकाचनाकरण करने के लिए ऐसा कहा।
या ये उपशमकरण, ये निदत्ति और निकाचित में आ जाता है ना, कि ये कोई अलग बात करता है।
उपशमकरण यानी वो जिसको हम अप्रशस्त उपशम कहते हैं, जो निकाचित है, निदत्ति है, नीचे नहीं आ सकते, अपकर्षण हाँ। नहीं हो सकता है, संक्रमण नहीं हो सकता। तो उपशमकरण यानी वो भी अपनी जगह बने रहते हैं, उसको उपशमकरण कहेंगे। ये अलग है, करण अलग है। अंतक कोड़ी तो पहले पहले ही हो, आपका कहना है उसको अंतक कोड़ा कोड़ी तो कर देते हैं कि नहीं कर देते, यही कहना है ना आपका। देखो यहाँ क्या कहते हैं,
नहीं कुछ क्लैरिफाई नहीं किया आगे भी।
वो जो निदत्ति निकाचितपना था वो फिर आके वो अपूर्व यानी अंतकोड़ाकोड़ी वाले में स्थित हो जाएगा।
हाँ।
उसका निदत्तीपना चला जाएगा अपूर्वकरण में, प्रथम उपशम में सम्यक के अपूर्वकरण काल में वो अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण हो जाएंगे। पहले में जो ऊपर स्थित थे वो नीचे आ जाएंगे। हाँ, अभी आगे पढ़ेंगे नीचे से दूसरी शंका, असंख्यात वर्ष की आयु वालों में ही त्रिवेद के ये तीनों करण प्राय करके होते हैं, यह कहां से जाना। इसी सूत्र से जाना। यानी ये वेदों में निदत्ति और निकाचित हो रहे हैं ना, वो लोगों को क्या लगता है कि ये कोई अलग कर्म हो गए, परंतु उसमें निकाचित पना है। सभी परमाणुओं में नहीं होगे, विशिष्ट परमाणुओं में होगे, कुछ परमाणु तो नीचे आते रहेंगे। नीचे की शंका, असंख्यात वर्ष की आयु वालों में नपुंसक वेद का बंधन न होने से उसमें आय तो होती नहीं, उल्टे अधस्थिति गणना के द्वारा उसके प्रदेश समूह की असंख्यात गुणहानियां निर्जरा को प्राप्त हो जाती है। असंख्यात गुणहानियां निर्जरा को प्राप्त होती है, उसका अर्थ क्या है? यानी उतने निषेक निर्जरा का, उतने निषेक क्यों? एक एक समय में एक एक निषेक गल जाए, क्योंकि असंख्यात वर्षायुष्क वाले हैं। असंख्यात वर्षायुष्क में कितने असंख्यात स्थितियां होगी, स्थितियां निषेक कितने होंगे ज्यादा? अरे एक आवली में असंख्यात निषेक होते हैं, तो असंख्यात वर्षायुष्क वाले में कितने निषेक होंगे? तो हम कितने निषेक जाते, तो एक गुणहानि, दो गुणहानि, तीन गुणहानि। कल हमने अनुभाग में गुणहानि देखी थी, कल शाम को। यहाँ निषेकों की गुणहानि भी ऐसी होती है, जितने निषेक जाके प्रदेशों की संख्या आदि होती है उसको गुणहानि कहेंगे। तो ऐसे असंख्यात गुणहानि चलिए जाएगी, क्योंकि इतने समय वहां रहता है वो। ये शंकाकार की शंका है। ऐसी स्थिति में ईशान कल्प में नपुंसक वेद का संचय करना व्यर्थ है। वो ईशान स्वर्ग में नपुंसक वेद का संचय करके आया है, फिर क्रम से वो असंख्यात वर्षायुष्क में उत्पन्न हुआ है, तो वहां नपुंसक वेद का बंध भले न हो, परंतु उसके हर समय गलना तो चल रही कि नहीं चल रही, ये प्रश्न है। तो न तो उदय को प्राप्त होते, सॉरी समाधान नहीं, क्योंकि निदत्ति और निकाचनापने को प्राप्त हुए नपुंसक वेद के प्रदेशाग्र, यानी जो ईशान स्वर्ग में केवल उनका बंध किया ऐसा ही नहीं है, तो उनको निकाचना और निदत्तिपना को भी प्राप्त कराया है। ऐसे जो प्रदेशाग्र न तो उदय को प्राप्त हो सकते हैं और न अन्य प्रकृति रूप से संक्रमण को प्राप्त हो सकते हैं। उसमें दो ही लिए, उदय को भी नहीं हो सकते और अन्य रूप संक्रमण भी नहीं हो सकता, अतः उनकी निर्जरा नहीं होती। तात्पर्य है कि उत्कर्षण के द्वारा उठाकर दूर स्वामित्व के काल से उपरिम स्थिति में फेंके गए, अतएव उपरिम स्थिति में फेंके गए है, उसी लिए उसको कहना है उत्कर्षण के द्वारा उठाकर दूर स्वामित्व के काल से उपरिम स्थिति में फेंके गए, अतएव उपशामना निधत्ति और निकाचना भाव को प्राप्त हुए नपुंसक वेद के प्रदेशों की निर्जरा नहीं होती। जो अलग अलग करण है बताए ना, उसमें ये तीन करण हो गए, उपशामना निदत्ति और निकाचना। फिर शंका, इन तीनों करणों का काल कितना है, कितने काल तक वो निदत्ति निकाचित रूप से रहेंगे, उपशमित रहेंगे? कहते जगन्य काल एक समय, ये तो जनरल स्टेटमेंट बता रहे, किसी की कितने समय तक होगी, मिनिमम एक समय के लिए। और उत्कृष्ट काल संख्यात सागर प्रमाण है, उपशमना निदत्ति और निकाचना, यानी कितने काल तक वो इसी तरह से उदय में नहीं आ सकते, ऐसा हो सकता है, तो संख्यात सागर, क्योंकि शक्ति स्थिति से अधिक काल तक उनका ठहरना नहीं हो सकता, ये तो कायम के लिए तो नहीं हो सकता। शक्ति स्थिति जब बंद हुआ था, उनकी जितनी व्यक्ति स्थिति थी उतनी उसकी शक्ति स्थिति, उतने ही काल तक वो ऊपर रहे, उदय में न आए, कितने काल तक हो सकता है? तो जितनी बंधी थी उतने काल तक, शंका, निदत्य और निकाचनापने को प्राप्त हुए प्रदेश, उत्कृष्ट से सब प्रदेशों के कितने भाग प्रमाण होते हैं? तो ऐसे कितने प्रदेश हो गए जो निकाचनापना को प्राप्त हुए हैं? उसमें भी मैक्सिमम पूछा, अधिक से अधिक कितने भाग प्रमाण होते हैं? समाधान, आचार्य इति वृषभ के उपदेश से असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं और उच्चारणाचार्य के उपदेश से असंख्यात बहुभाग प्रमाण होते हैं। ये निकाचना निदत्ति के बारे में ये बात है, पहले भी हमने धवला में देखा था कि वो कोई एक विशिष्ट कर्म नहीं होता है निदत्ति निकाचित। जो परमाणु अभी तक अपकर्षण होकर उदय में नहीं आते हैं, उनका अन्य प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता है, उसी को कहेंगे। अब आगे, वहां पल्ल्य के असंख्यात वे भाग काल के द्वारा स्त्री वेद की पूर्ति की, इस वाक्य के द्वारा असंख्यात वर्ष की आयु वालों में एक भव का परिमाण बतलाया है। एक भव का प्रमाण कितना है? पल्ले के असंख्यात विभाग वाला कुल त्रसकाय स्थिति के अंदर वहां रहने के सब काल का जोड़ नहीं, यानी बहुत बार वहां जाएगा, सबका मिलकर वो काल नहीं बताया है, एक भव का काल बताया है, क्योंकि वह तो संख्यात सागर प्रमाण है। क्या कहते हैं
टोटल,
इसका अर्थ क्या है? 2000 सागर में
असंख्यात वर्ष के आयु में ये
देखो, अधिक से अधिक, अब ये पल्ले का असंख्यात भाग लिया, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण वहां के भव लिए, तो पल्ले का असंख्यात भाग तो एक पल्ले में ही असंख्यात हो जाएगा ना, और ऐसे संख्यात सागर, संख्यात पल्लों का एक सागर और ऐसे संख्यात सागर, इन्हें इतने भव हो सकते हैं। देखो क्या कहते हैं, कुल त्रसकाय स्थिति के अंदर वहां रहने का, इन्हें असंख्यात वर्ष की आयु उमैल रहने का, अभी हर बार पल्ले का असंख्यात भाग मत लो, तीन पल्ले तक की कोई भी आयु ले लो ना, हमें समझने के लिए, एक पल्ले, दो पल्ले, तीन पल्ले, या पल्ले का असंख्यात भाग, संख्यात भाग कुछ भी हो सकता है। तो भोग भूमि के भव बहुत बार किए तो 2000 सागर में कितना काल वहां जाएगा? तो संख्यात सागर। इन्हें टोटल जोड़ लिया वो, यानी बार बार मरकर वहां पर, क्योंकि यहां से जाएगा तो देव में ही जाना है, यहां से देव में जाएगा, देव में से फिर कर्मभूमि में आएगा, कर्मभूमि से वहां चले जाएगा,
और देव में हाँ, इतना सागर तक,
हाँ तो देवों के भी उतने ही हो जाएगी ना। शंका, फिर सम्यक को प्राप्त करके मरा, यानी असंख्यात वर्षायुष्क में बाद में वो सम्यक को प्राप्त करके मरा, और पल्ले की स्थिति वाला देव हुआ, ऐसा क्यों कहा? कहते पुरुष वेद की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि अभी लगातार पुरुष वेद को बांधना है। यदि ऐसा है तो डेढ़ पल्ले की स्थिति वाले देव में क्यों नहीं उत्पन्न कराया? समाधान, क्योंकि डेढ़ पल्ले की स्थिति की ही यहाँ पल्लोपम की स्थिति ऐसी विवक्षा की है। तो कहते सम्यक तो प्राप्ति के लिए अधिक आयु होगी, ऐसा आपके कहते हैं। पहले आयु बांधी नहीं, बाद में बांधेगी ना आयु, तो
यहाँ पे ही सिर्फ समझ में नहीं आया, डेढ़ पल्ले के स्थिति वाले देहों में उत्पन्न क्यों नहीं कराया? वो तो पल्ले के असंख्यात भाग वाली आयु में ही उत्पन्न हुआ और वहाँ पे उससे सम्यक तो प्राप्त किया ना,
नहीं वो तो भोग भूमि में सम्यक तो प्राप्त किया,
और पीछे यहाँ पे जो
पीछे वो पीछे उत्पन्न हुआ, पीछे ने स्वधर्म में उत्पन्न होगा ना, ऊपर तो कहीं जाएगा नहीं, तो उसमें तो कोई जो विशिष्ट स्थिति है वहाँ की, तो वहाँ जितने भी होगी तो पल्लियों की ही होगी ना। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ऐसी विवक्षा क्यों की, जब तक सागर पूरा नहीं होता तब तक की स्थिति को पल्लोपन स्थिति कहने के आगम में रूढ़ी है। जैसे हम कहते हैं लाखों, जब तक करोड़ पूरा नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, लाखों। तो लाखों वर्ष, लाखों कहो या लाख वर्ष की कहो, अनेक लाख हो सकते हैं। तो अनेक पल्लों को भी जब तक सागर नहीं होता तो हम कहेंगे अनेक पल्ल, उसके लिए पल्ले की स्थिति कह दिया। पल्ले कहने एक पल्ले की ऐसी बात नहीं, अकेले एक डेढ़ जो कोई संख्यात पल्ले हो जाएगा। यह एक क्रम है। क्या कहा, कौन सा क्रम बताया, पहले नपुंसक वेद की पूर्ति कराई, वह असंख्यात रूप से फिर पुरुष पूर्ति के। इसी प्रकार अनेक बार यही क्रम जानना चाहिए, परंतु अनेक बार उत्पन्न होने का वह क्रम देशामर्शक होने से सूत्र में नहीं कहा। अतः त्रस्त स्थिति के अंदर संख्यात बार तीनों वेदों की पूर्ति कराना चाहिए, अर्थात संख्यात बार ईशान स्वर्ग में गया, संख्यात बार असंख्यात वर्ष की आयु वाले में उत्पन्न हुआ, और संख्यात बार सौधर्म कल्प में उत्पन्न हुआ। शंका, फिर अंत के भव में क्षपक श्रेणी पर क्यों चढ़ाया है। समाधान, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के प्रदेश समूह को पुरुष वेद रूप से परिणमाने के लिए अंत के भव में क्षपक श्रेणी पर चढ़ाया है। फिर शंका,
यहाँ पे ये जो संख्यात बार बताया है वहाँ पे और पहली बार जो गुणित कर्मों से जो बेजीवन द्रव्य को प्राप्त होता है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा
गुणित कर्मांशिक होने के लिए ही वो
नहीं, पर हमने देखा कि गुणित कर्मांशिक होने के लिए नपुंसक वेद के लिए जो नरक में था,
हाँ नरक में था वहाँ से लिया
कुछ
था।
दो तीन आयु वो तीरियन पे
हाँ, उसके बाद वो जितने इसलिए संख्यात बार लिया है, ऐसा ही जीव लिया, पहले गुणित कर्मांशिक होके इसमें आया है, उसी को लिया है ना।
तो डज इट मीन कि एक बार में ये गुणित कर्मांशिक नहीं हो जाएगा, वेद के लिए,
हाँ वेद के लिए अगर बताना है तो बारंबार उसको लेना है। अब बारंबार उसको सम्यक तो भी उत्पन्न कराना पड़ेगा, मिथ्या तो में भी जाएगा, तभी तो फिर दोबारा उसको नपुंसक वेद का बंध हो सकता है।
तो बहुत लंबा काल चला गया,
वही तो 2000 सागर है ना उसके पास। सम्यक तो के बाद उत्पन्न हुआ है, तो वहाँ जाकर उसको सम्यक तो उत्पन्न कराते हैं। हाँ
नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था कि वो सम्यक संख्यात बार ये प्रोसेस बताया तो सम्यक तो प्राप्त किया, पीछे मनुष्य में आया, पीछे मनुष्य में आके मिथ्यात्व में गया, पीछे उद्वेला कर दी, पीछे वापस सातवें नरक में उत्पन्न हुआ, पीछे वहाँ से
नहीं नहीं नहीं, वो सातवें नरक में बार बार नहीं भेजना है भी उसको, वो सब करके आया है, अब जो बची हुई स्थिति है
नहीं, पर ये संख्यात बार ये पूर्ति करके आया है, इसे लिखा है ना, इसके लिए मैंने पूछा।
देखो गुणित कर्मांशिक में जितना पॉसिबल है उसको ले लिया उन्होंने, ऑलरेडी जो आया था तो गुणित कर्मांशिक रूप से आया था।
यहाँ पे क्या लिखा है, संख्यात बार तीनों वेदों की,
संख्यात बार है दो चार बार जो कुछ हो सकता है,
पर दो चार बार के लिए भी कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा।
होने दो ना, उसके क्या है, वहाँ वेदों की पूर्ति करानी है, जो तो नरक में नहीं हो सकता है,
नरक में जाना पड़ेगा,
अभी सातवें नरक में नहीं भेजना उसको, अभी सातवें नरक के बाद बीच में नहीं आएंगे। क्योंकि ऑलरेडी वो सातवें नरक से होके आया है, ऐसा ही जीव लिया, गुणित कर्मांशिक ऑलरेडी था वो, और आगे चलकर उसको इतने भोग कराए। देखो नीचे की शंका बड़ी, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का प्रदेश समूह पुरुष वेद के प्रदेश समूह से असंख्यातवे भाग बचता है, क्योंकि पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संचय प्राप्त होने तक उनकी असंख्यात गुणहानियां गल चुकी हैं। क्या कहते हैं, वो इतने असंख्यात वर्षायुष की वाले हैं, तो बाय द टाइम इसका संचय होता है वो तो गलते चले जाता है। तथा गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा क्षपक श्रेणी में गलित द्रव्य भी पुरुष वेद के द्रव्य के असंख्यात विभाग प्रमाण है, ये शंकाकार की शंका चल रही है। किंतु वही स्त्रीवेद और नपुंसक वेद के द्रव्य से असंख्यात गुणा है, क्योंकि उत्कर्षण अपकर्षण भागार से पल्लोपम के अंदर की नाना गुणानी शलाकाएं असंख्यात गुणी पाई जाती हैं। यानी जो उत्कर्षण अपकर्षण भागार है उससे ये नाना गुणानी शलाकाएं असंख्यात गुणी पाई जाती है। और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि गुण संक्रमण भागार सबसे थोड़ा है। अब ये भागाकारों का अल्पभूत बता रहे हैं। गुण संक्रमण भागार सबसे थोड़ा है, उत्कर्षण अपकर्षण भागार उससे असंख्यात गुणा है, अधप प्रवृत्त संक्रम भागार उससे असंख्यात गुणा है। ये अलग अलग संख्याएं बता रहे हैं, ये विशिष्ट भागाहारों की प्रपोर्शन या उसका प्रमाण बता रहे हैं। योगों का गुणकार उससे असंख्यात गुणा है, इससे यहाँ कुछ लगता नहीं है। अधप प्रवृत्त संक्रमण योग यहाँ का विषय नहीं है, परंतु उन संख्याओं का अल्पभूत यहाँ पर बता रहे हैं। और ये शंकाकार अपना विशेष ज्ञान यहाँ बताना चाहता है। नाना गुणानी शलाकाएं उससे असंख्यात गुणी है, और पल्लोपम के अर्धच्छेद उससे विशेष अधिक है। हाँ, योगों का गुणकार, योगों में जो गुणकार होता है, जैसे योगस्थानों में जो गुणकार होगा उसकी बात होगी मेरे ख्याल से। ये भागाहार में जो अल्पबोध होते ना, हमने कर्मकांड में देखा था, भागाहार चूलिका जो था ही ना, उसमें ये अलग अलग अल्पबोध बताए थे कौन से भागाहार की वैल्यू कितनी है और कहाँ कौन सा गुणकार की वैल्यू कितनी है। नाना गुणानी शलाकाएं, तो ये तो स्थिति की शलाकाएं बताई, और पल्ले के अर्धच्छेद उससे विशेष अधिक है। ये तो पल्ले के अर्धच्छेद, ये तो एक विशिष्ट फिगर है। अर्धच्छेद किसको कहना मालूम है आपको? नहीं मालूम? आपको मालूम है चार के अर्धच्छेद कितने हैं? अर्धच्छेद का अर्थ होता है कितनी बार दो से भाग देंगे तो एक संख्या आएगी, दो बार, तो उसको कहेंगे चार का अर्धच्छेद दो है। सोलह का अर्धच्छेद कितनी है, कितना है? चार। यानी जितनी बार दो संख्या गुणा करके उसकी वैल्यू आएगी, दूसरी भाषा में कितने बार दो से भाग देंगे तो एक आएगा, तो चार बार। पहली बार दो से भाग दिया तो आठ आए, दूसरी बार दिया तो चार आए, तीसरी बार आए तो दो आए, चौथी बार दिया तो एक आए, तो सोलह का अर्धच्छेद होता है चार। चार का अर्धच्छेद दो, सोलह का अर्धच्छेद चार, 256 के अर्धच्छेद 8, डबल होता है। जहाँ वर्ग होता है वहाँ अर्धच्छेद डबल होते हैं। अर्धच्छेदों में तो टोटल होती है, यानी जिसको एडिशन होती है। जहाँ गुणकार होता है ना, संख्याओं में जहाँ गुणकार होता है, अर्धच्छेदों में उसके एडिशन होती है। अपनी भाषा में लॉग कहेंगे उसको। लॉग शब्द सुना है? हाँ, लॉगरिथम, उसी को यहाँ अर्धच्छेद कहेंगे।
पल्ले का तो अर्धच्छेद बहुत बड़ा है।
पल्ले का अर्धच्छेद बहुत बड़ा है। हाँ, यानी जितनी बार दो संख्या को लगकर आपस में गुणा करने से पल्ले संख्या आएगी, वो पल्ले का अर्धच्छेद है। ये हमें इन संख्याओं का अल्पभूतव समझ में आवे, उसकी मैग्नीट्यूड, इसलिए ये बात बताई यहाँ पर। इस अल्पभूतव के बल से उसकी सिद्धि होती है। क्या सिद्ध किया? क्योंकि वो कितना उसका द्रव्य गलित हो जाता है। अतः क्षपक श्रेणी में आय से व्यय बहुत है, इसलिए पल्ले की आयु वाले देव के अंतिम समय में पुरुष वेद का उत्कृष्ट स्वामित्व देना चाहिए। क्या कहते हैं? उसने वहाँ बंध किया है ना ज्यादा, तो वहीं पर उसका उत्कृष्ट स्वामित्व कहो ना, बाद में तो इतना सारा गल जाएगा। समाधान, अब इस शंका का समाधान करते हैं। क्षपक श्रेणी में गुण श्रेणी के क्रम से निर्जरा को प्राप्त होने वाले द्रव्य से स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का द्रव्य असंख्यात गुणा है। क्योंकि वह उत्कर्षण अपकर्षण भागार की अपेक्षा असंख्यात गुणे हीन भागार से भाग देने पर लब्ध एक भाग प्रमाण है। हमेशा उत्कर्षण अपकर्षण के भागार के द्वारा जो अपकर्षित होता है उसके बदले यहाँ का जो भागार है
यहाँ पे गुणश्रेणी तो तीनों में होगी ना।
हाँ, गुणश्रेणी हाँ, जिसका जो जिस उदय के साथ चढ़ेगा वो उदय रूप होगी
हाँ, बाकी
और बाकी तो गुणश्रेणी तो तीनों में होगी हाँ। तो क्या कहते हैं यहाँ जो द्रव्य बाकी बचेगा
हाँ।
वो जो अपकर्षित द्रव्य से असंख्यात गुणा बचेगा। नहीं समझे, कितने द्रव्य का अपकर्षण होता है? अपकर्षण भागार नाम की जो असंख्यात वाली संख्या है
उससे भाग दो,
उससे भाग देंगे तो एक भाग प्रमाण द्रव्य अपकर्षित होता है, यानी असंख्यात वा भाग अपकर्षित होता है। बचा भाग कितना रहता है उससे असंख्यात गुणा। देखो इस वाक्य को फिर पढ़ेंगे, शंका का समाधान करते हैं। क्षपक श्रेणी में गुण श्रेणी के क्रम से निर्जरा को प्राप्त होने वाले द्रव्य से, ये गुण श्रेणी के क्रम से कौन सा द्रव्य निर्जरा को प्राप्त होगा? वो अपकर्षण में से जो नीचे आया है। अपकर्षण में किसे पूरा का पूरा गुण श्रेणी में नहीं दिया जाता, उपरितन स्थिति में भी दिया जाता है। फिर भी समझने के लिए, जितना निर्जरा को प्राप्त होगा उस द्रव्य से स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का द्रव्य कौन सा जो बचा हुआ जो सत्ता में है वो असंख्यात गुणा है, क्योंकि वह यानी वह द्रव्य उत्कर्षण अपकर्षण भागार की अपेक्षा असंख्यात गुणे हीन भागार से भाग देने पर लब्ध एक भाग प्रमाण है। यानी अपकर्षित द्रव्य कैसे निकालते हैं? अपकर्षित भागार के भाग देने से आता है, और बाकी द्रव्य कैसे है? बहुत छोटे भागार से भाग देने पर आता है, ज्यादा द्रव्य आता है। शंका, जब प्रथम गुणानी से लेकर सब गुणानियों का द्रव्य अपने अनंतरवर्ती नीचे की गुणहानि के द्रव्य से दुगुणाहीन दुगुणाधीन होता है, तो स्त्रीवेद और नपुंसक वेद के द्रव्य की अन्योन्य अभ्यस्य राशि ही यहाँ भागार क्यों नहीं है? तो वहाँ जो द्रव्य बचा है वो अन्योन्य अभ्यस्य राशि से भाग देंगे तो उस भागार की अपेक्षा वो एक भाग प्रमाण होनी चाहिए। जैसे कल हमने देखा था, टोटल द्रव्य को अन्योन्य अभ्यस्य राशि से भाग दो तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य आता है। जैसे कल शाम को यह विषय चला था, 3100 मान लेते हम परमाणु और 5 गुणहानि है, तो अन्योन्य अभ्यस्य राशि -1 से भाग दो तो उसको 100 आया लास्ट गुणहानि का द्रव्य। तो यही कहते हैं, तो उसी का भागार क्यों नहीं देते हैं? जो अंत में रहने वाला द्रव्य मिल जाएगा हमको वो थोड़ा होना चाहिए, यहाँ तो ज्यादा कह रहे हैं आप। समाधान, नहीं, क्योंकि विवक्षित स्थिति से नीचे की स्थिति के द्रव्य के असंख्यात खंड करके उनमें से बहुत खंडों को वहीं स्थापित करके, ये किसी एक निषेक में जितना द्रव्य है उसमें से असंख्यात बहुभाग को वहीं स्थापित करके ऊपर प्रक्षिप्त द्रव्य का भागार उत्कर्षण अपकर्षण भागार से असंख्यात गुणा हीन पाया जाता है, तथा बंध को छोड़कर सत्ता में स्थित द्रव्य के गोपुच्छकार रहने का कोई नियम नहीं है। बंध होता है तब उसके नीचे के निषेक में ज्यादा ऊपर के कम, ऐसे गोपुच्छाकार रचना होती है, परंतु सत्ता में पड़े हुए द्रव्य में ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उत्कर्षण अपकर्षण के निमित्त से अनुलोम और विलोम रूप से स्थित गोपुच्छों का और उन दोनों के बिना स्थित गोपुच्छों का अवस्थान पाया जाता है। अनुलोम और विलोम ने अनुलोम ने नीचे ज्यादा ऊपर कम और विलोम ने नीचे कम ऊपर ज्यादा, ये अनुलोम और विलोम। क्योंकि उत्कर्षण के निमित्त से ऊपर ज्यादा चले जाएंगे तो वो विलोम रूप से स्थित हो जाएंगे। अनुलोम ने नीचे के निषेक बड़े जो हम हमेशा दिखाते हैं और ऊपर टेपरिंग, विलोम ने उल्टा क्रम, तो कहते यह कहाँ से जाना, इसी सूत्र से जाना। अतः क्षपक श्रेणी में ही पुरुषवेद का उत्कृष्ट स्वामित्व देना चाहिए, इसके लिए ये सारे कारण मीमांसा बताए। थोड़े प्रदेशों की निर्जरा कराने के लिए स्त्रीवेद और नपुसक वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। पुरुष वेद का उत्कृष्ट संचय कराना है इसलिए इनके साथ चढ़ाओ, ऐसा कोई कहते हैं, किंतु वह कहना नहीं बनता, क्योंकि पुरुष वेद और इतर वेद के उदय से श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों के परिणाम समान होने से थोड़े या बहुत द्रव्य में से जो प्रदेश गुणश्रेणी रूप से स्थापित किए जाते हैं वे समान होते हैं, ऐसा क्यों कहा? अनिवृत्ति करने तो परिणामों की तो समानता है, तो गुणश्रेणी भी सभी का प्रमाण समान होगा। शायद कहा जाए कि पुरुषवेद की प्रकृति गोपुच्छाओं से यानी उसके प्रकृति के निषेकों से, स्त्रीवेद और नपुसक वेद की प्रकृति गोपुच्छाएं सूक्ष्म है सो भी नहीं है, क्योंकि नवीन उत्कर्ष प्राप्त पुरुष वेद की गोपुच्छाओं से उत्कर्षण के बिना बहुत काल तक स्थित स्त्रीवेद और नपुसक वेद की प्रकृति गोपुच्छाओं के थोड़े होने में विरोध आता है। यानी अभी नवीन उत्कर्ष को प्राप्त यानी उत्कर्षण करके जो पुरुष वेद की गोपुच्छा यानी गोपुच्छाओं का अर्थ क्या है? निषेक। पुरुष वेद के निषेकों से उत्कर्षण के बिना बहुत काल तक स्थित स्त्रीवेद और नपुसक वेद की प्रकृति गोपुच्छाओं के थोड़े होने में विरोध है, यानी वे भी बहुत है।
इसे देखे जावे तो हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये तो बंध तो है ही नहीं, ये दो प्रकृति का,
यही तो शंकाकार का शंका है, इसलिए इतनी लंबी चौड़ी शंका ली।
उत्कर्षण होता है यहाँ पे, उत्कर्षण नहीं होता है, खाली अपकर्षण ही होता है।
उत्कर्षण पहले तो ये निधत्ति निकाचितपना को प्राप्त थे ना, इसलिए वहाँ पर बने हैं, वहाँ पर बहुत काल तक स्थित है। दूसरी बात कहते हैं ऐसे जीव को त्रिवेद और नपुसक वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ाना युक्त नहीं है, क्योंकि इसे त्रिवेद और नपुसक वेदी मनुष्य होने के लिए क्या कहना चाहते हैं? मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा और फिर पुरुषवेद का बंधन रुक जाएगा ना, और तब इसके त्रिवेद और नपुसक वेद का विद्या संक्रमण के बिना अदप प्रवृत्त भागार से ही संक्रमण का प्रसंग प्राप्त होगा। मिथ्यात्व में व्यय के अनुसार ही आय होती है, अतः इससे कोई दोष नहीं है। समाधान, तो फिर ऐसा लेना चाहिए, ऐसा जीव मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात्व गुण के द्वारा निकाचितपने को प्राप्त होने वाले प्रदेशों से सम्यक्त गुण के द्वारा निकाचितपने को प्राप्त होने वाले प्रदेश असंख्यात गुणे होते हैं। फिर शंका, यह किस प्रमाण से जाना? इसी सूत्र से जाना। अतः पुरुष वेद के उदय से ही क्षपक श्रेणी पर चढ़ाना चाहिए। एक एक वाक्य क्यों कहा, उसके सब बारे में क्या क्या अन्य मत है अन्य आचार्यों का, और वो कौन सा अधिक ठीक लगता है, वो भी उन्होंने चर्चा की।
यह ऐसे बताया सब्जेक्ट को गुण के द्वारा निकाचित पने को प्राप्त होने वाला जो भी
ऐसा नहीं है, ये निकाचित पने को प्राप्त होना है, वो उत्कर्षण के द्वारा ऊपर चले
जाए, नीचे नहीं आना, उधर ही स्थित रहना।
देखो अभी सम्यक्त्व में पुरुष वेद का बंध है, तो पुरुष वेद के परमाणु निकाचित पने को प्राप्त हो गए, क्योंकि ऊपर कौन सा उत्कर्षण होगा, जिसका बंध है उसका होगा, वही बात यहाँ बता। ये फिर अपूर्वकरण वगैरह होता है ऊपर के गुणस्थानों में, फिर वो ऊपर निकाचितपना निगदतिपना चला जाता है,
वो तो श्रेणी में होगा ना,
श्रेणी में, हाँ यही तो बात है ना, शपक श्रेणी में बाद में वो सत्ता रूप से तो है वहां पर। अब संचयानुगम कहते हैं वह इस प्रकार है, चरिम समयवर्ती देव के पुरुष वेद का जो द्रव्य है वहां से लेकर पुरुष वेद का उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होने तक उसका असंख्यात भाग ही नष्ट हुआ है। क्यों कहते हैं? चरम समयवर्ती देव ने हमने देखा था वो समय प्राप्त करके देव में गया है और पुरुष वेद का बंद कर रहा है,
असंख्यात वर्ष की आयु वाला देव ना,
देव में पल्लों की आयु वाला देव हुआ है ना, हाँ, और वहां उसके चरम समय में वहां से लेकर पुरुष वेद का उत्कृष्ट स्वामित्व कब बताया है?
शपथ श्रेणी में
जब श्रीवेद नपुसक वेद का यानी श्रीवेद का जब प्रक्षिप्त करता है तब, तो इतने काल में उसकी निर्जरा हुई कि नहीं हुई, वही कहते थे। तो चरिम समयवर्ती देव के पुरुष वेद का जो द्रव्य है वहां से लेकर पुरुष वेद का उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होने तक उसका असंख्यात भाग ही नष्ट हुआ है। आप कहेंगे इतने काल तक उसकी निर्जरा हुई नहीं, असंख्यात पे भागी गया, क्योंकि पुरुष वेद के उत्कृष्ट स्वामित्व के समय में पुरुष वेद की जो गुण श्रेणी गोपुच्छा उदय में आती है उसका असंख्यात भाग ही नीचे अर्थात देव पर्याय के अंतिम समय से लेकर उत्कृष्ट स्वामित्व काल के उपांत समय तक नष्ट हुआ है। यानी जितने निषेक थे उसमें से असंख्यात वे भाग प्रमाण निषेक ही उदय रूप होकर निकल गए, तथा सर्वसंक्रम भागार के द्वारा स्त्रीवेद और नपुसक वेद का जो द्रव्य पुरुष वेद रूप से संक्रांत हुआ, ये सर्वसंक्रम भागार क्या होता है?
पूरा द्रव्य संक्रांत,
तो उस भागार की वैल्यू कितनी होगी?
उतना ही होगा जितना द्रव्य है,
तो एक परमाणु आएगा?
नहीं नहीं सर, एक एक हो जाएगा, सॉरी,
लाख परमाणु है और लाख के लाख संक्रमित होने हैं, तो भागार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
एक।
अगर भागार भी हम लाख कहेंगे तो एक ही परमाणु संक्रमित होगा, है ना?
उल्टा
हो गया। सर्व संक्रमण जितने सत्ता में है वो सारे संक्रमित होना, स्त्रीवेद के सारे परमाणु पुरुष वेद रूप से हो जाना, उस समय जितने हैं वो सारे, तो उसको कहेंगे सर्व संक्रमण। तो सर्व संक्रम भागार के द्वारा उसकी वैल्यू कितनी है वो बताने के लिए भागार में बताने की पद्धति है। सर्व संक्रम भागार ने वन, जितने परमाणु है उसको एक से भाग दो तो वही वैल्यू आ जाएगी, उतने के उतने सारे एक समय में संक्रमित हो जाएंगे। उसके द्वारा स्त्रीवेद और नपुसक वेद का जो द्रव्य पुरुष वेद रूप से संक्रांत हुआ है उसका असंख्यात भाग ही गुण संक्रम भागार के द्वारा कषाय रूप से संक्रांत हुआ है।
अच्छा, यहाँ पे कषाय रूप भी संक्रमित होता है द्रव्य?
हाँ होगा ना, क्योंकि सारे ही नौ कषाय कषाय रूप से संक्रमित होकर नष्ट होने वाले।
तो ये पुरुष वेद की बात है,
पुरुष वेद रूप से संक्रमण चल रहा है, उसी समय गुण संक्रम भी चल रहा है ना, वहाँ पर गुण संक्रम भी चल रहा है, एट अ टाइम दोनों ही क्रियाएं हो रही। अतः कुछ कम डेढ़ गुणानी मात्र पंचेंद्रिय के समय प्रबद्ध प्रमाण उत्कृष्ट द्रव्य पुरुष वेद का होता है ऐसा मानना चाहिए। हमने वहां भी देखा था कुछ कम डेढ़ गुणानी प्रमाण स्त्री वेद का है, अब वो सारा का सारा पुरुष वेद रूप से हो गया ना, तो वहां भी कहेंगे कुछ कम डेढ़ गुणानी गुणित समय प्रबद्ध, क्योंकि उसका असंख्यात भाग अभी तक निकल गया है, असंख्यात बहुभाग है, तो कुछ कम डेढ़ गुणानी से गुणित समय प्रबद्ध। क्या एक, हाँ एक पल्ले और डेढ़ पल्ले जो बताया है तो सम्यक तो प्राप्त करके गया है, मिनिमम आयु ली वहां की, हाँ वहाँ भी मिनिमम आयु ली है, थोड़ी आयु ली है, थोड़ी यानी वो तो एकदम कम तो नहीं ले सकते ना, वहाँ तो वहाँ की जितनी है देवों में स्थिति भी गलती है और उसके प्रदेश भी कम होते हैं। जैसे पल्ले के असंख्यात भाग वाली ली, वैसे वहाँ पल्ले की ली। अब ये नया सूत्र पढ़ेंगे हम। तेने व जादे पुरिसवेद छ नो कसायाणम पदे सगम कोद संजलने पक्षितम तादे कोद संजलनस उक्कसयम पदेस संतकम्मम। वही जीव, कौन सा लिया, जिसके पुरुष वेद का उत्कृष्ट संचय था, वही जीव जब पुरुष वेद और छ नो कषायों के द्रव्य को, नपुसक वेद श्रीवेद तो पुरुष वेद में आ ही गया है, अब पुरुष वेद और छ नो कषायों का द्रव्य संज्वलन क्रोध में प्रक्षिप्त कर देता है, तब क्रोध संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। अन्य 12 कषायों का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म कहाँ देखा था, गुणित कर्मावशिक नारकी सातवें नरक के अंतिम समय में। अब यहाँ संज्वलन का उत्कृष्ट कब है, अभी हमने जो देखे थे पुरुष वेद का, जिसके उत्कृष्ट है पुरुष वेद और छ नौ कषायों का संक्रमण होगा क्रोध कषाय में, तब उसका उत्कृष्ट द्रव्य होगा।
बाकी रह जाएगा, बाकी का संक्रमण होगा।
हाँ
वही लिया ना,
वही लिया। शंका, वही जीव ऐसा निर्देश क्यों किया। समाधान, पुरुष वेद के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म वाले जीव के द्वारा पुरुष वेद और छह नौकषायों के क्रोध संज्वलन में संक्रांत कर देने पर क्रोध संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है, यह बतलाने के लिए किया है। अब वही फिर दोबारा सब बताएंगे। 2000 सागर कम कर्म स्थिति काल तक बादर पृथ्वी कायकों में भ्रमण करके फिर आगमानुसार पूरे त्रस स्थिति काल तक नारकियों में भ्रमण करके वहां क्रोध संज्वलन और छह नौकायों का उत्कृष्ट प्रदेश संचय करके त्रस स्थिति काल के थोड़ा शेष रहने पर ईशान स्वर्ग के देवों में उत्पन्न होकर वहां नपुसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संचय करके फिर आगमानुसार असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिर्यंचों में उत्पन्न होकर पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल के द्वारा स्त्रीवेद का उत्कृष्ट प्रदेश संचय करके फिर सम्यक्त्व को प्राप्त करके पल्ले की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होकर पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संचय करके मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। वहां सबसे लघु काल 8 वर्ष के बाद क्षपक श्रेणी पर चढ़ने के योग्य होकर अपूर्व करण गुणस्थान में प्रवेश करके वहां स्त्रीवेद और नपुसक वेद के द्रव्य को गुणसंक्रम भागार के द्वारा पुरुषवेद हास्य रति भय जुगुप्सा और 4 संज्वलन कषायों में संक्रांत करता है, क्योंकि वहां से गुणसंक्रमण शुरू होता है। हम केवल आसाता का साता इतना ही देखते, वो बात नहीं है, यानी यहाँ तो गुण संक्रमण यहाँ से शुरू ही हो रहा है, लास्ट में हो जाएगा वो सर्व संक्रमण हो जाएगा। अब अपूर्वकरण से उसका संक्रमण तो शुरू ही है। पुरुष वेद के द्रव्य को अधप प्रवृत्त संक्रम के द्वारा बध्यमान कषायों में संक्रांत करता है। ये संक्रमण के अलग अलग प्रकार है। अधप प्रवृत्त संक्रमण में तो जिसका बंध है उसमें वो संक्रमण चलता है। कषाय और नौ कषाय के द्रव्य का भी उसी अधप प्रवृत्त संक्रमण भागार के द्वारा पुरुष वेद में संक्रमण करता है। देखो अभी तक उल्टा पुल्टा कैसा भी संक्रमण होगा, कषाय का भी नौ कषाय में और नौ कषाय का भी कषाय में, जब जाके क्षपणा का समय आ जाएगा तब वो अनुपूर्वी संक्रमण होगा। पुरुष वेद का तो क्रोध में ही जाएगा, क्रोध है वो मान में ही जाएगा, मान है वो माया में ही जाएगा, अभी कषाय का अनुकषाय रूप वहाँ नहीं होगा, परंतु पूर्व अवस्था में हो सकता है। इस प्रकार इस क्रम से अपूर्व करण को बीता कर अनिवृत्ति करण काल के संख्यात बहुभाग बीतने पर 13 कषायों का अंतरकरण करके, ये कौन से 13 कषाय है?
9 कषाय।
देखो 13 कषाय क्यों कहा, क्षपक श्रेणी चल रहे हैं ना, मोनी की 28 प्रकृतियों में से क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले के अनंत अनुबंधी और दर्शन मोनी है ही नहीं है, तो 7 चले गए, 21 प्रकृतियों के साथ चढ़ना शुरू हो गया। अब केवल मोहिनी की बात करेंगे तो उसमें पहले में पहले क्या होता है, 9 गुणों में 8 कषायों का उसका क्षय हो जाता है, तो 13 में से 8 गए, कितने रहे? नहीं, 21 में से 8 गए, 13 रह गए। तो 13 में अंतरकरण करता है, अंतरकरण का अर्थ गैप होता है, ऊपर और नीचे ऐसे स्थितियों का विभाजन होगा अभी यहाँ पर। फिर नपुसक वेद के क्षपण का प्रारंभ करता है, क्षपणा करना इन्हें क्या है, स्त्री वेद रूप से परिणमित होना। पुनः उसका प्रारंभ करते हुए गुण संक्रम के द्वारा नपुसक वेद को पुरुष वेद में संक्रांत करता है, चूंकि नवे गुणस्थान में अंतरकरण के बाद जो संक्रमण होता है वह अनुपूर्वी क्रम से होता है। अब इसको अनुपूर्वी क्रम कहते हैं, अंतरकरण के बाद जो संक्रमण होता है, पहले जो संक्रमण होता था वो कषाय भी नौ कषाय रूप होते थे, कोई भी किसी में भी संक्रमित होता था। अब अंतरकरण के पश्चात जो संक्रमण होगा वो विशिष्ट क्रम से ही होगा, अतः शेष कषायों में नपुसक वेद और श्रीवेद का संक्रमण न करके नपुसक वेद का क्षपण करता हुआ नपुसक वेद की द्विचरम फाली के प्राप्त होने तक जाता है, यानी नपुसक वेद का तो पुरुष वेद में ही होगा संक्रमण, उसके बाद अंतिम फाली को पुरुष वेद में संक्रमण कर नष्ट कर देता है।
फिर पुरुष वेद में संक्रमण होता है, स्त्री वेद में नहीं होता है, अंतिम फाली
नपुसक वेद का पुरुष वेद में डायरेक्ट हो रहा है सभी फालियों का। फिर स्त्रीवेद के क्षपण का प्रारंभ करके अंतर्मूर्त काल को बिताकर उसके क्षपणा काल के अंतिम समय में स्त्रीवेद की अंतिम फाली के पुरुष वेद में संक्रांत होने पर, यानी वो पुरुष वेद रूप ही हो रहा है स्त्रीवेद भी, पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है। पुनः इसी पुरुष वेद के साथ 6-9 कषायों के सर्व संक्रमण के द्वारा क्रोध संज्वलन में संक्रांत होने पर, यानी उसके अंतिम फाली उस पर रूप होने पर, एक समय में तो होता नहीं कार्य, क्रोध संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है, यह इस सूत्र का भावार्थ है। कल विशेष चर्चा करेंगे इसके। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लो कालो सोवाणी सदा देत हो प्रेरणा में।